તારીખ 28/12/1991 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સોનગઢમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 36.
સમ્યક દર્શન કે પર્યાય મેં પૂરા દ્રવ કી શ્રદ્ધા આતી હૈ, દ્રવ આતા નહીં. અદ્ય પ્રવચનમાં પણ આના મેં જ્ઞાનની વાત હતી. સમ્યક જ્ઞાન કે પર્યાયમાં દ્રવ જૈસા પરિપૂર્ણ હૈ વૈસા ઉસકા જ્ઞાન આતા હૈ. ખરેખર તો દ્રવ સંબંધી જ્ઞાન જો પર્યાય મેં આતા હૈ, પર્યાય કા જ્ઞાન પર્યાય મેં આતા હૈ. પર્યાય જો જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ, વહી જ્ઞાન મેં પર્યાય મેં વહી પર્યાય મેં જ્ઞાન ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. પ્રશ્ન અહીંયા છે ને, વાસ્તવ મેં તો દ્રવ સંબંધી જ્ઞાન જો પર્યાય મેં આતા હૈ, વહ જ્ઞાન પર્યાય કા પર્યાય મેં જ્ઞાન જ્ઞાન આયા હૈ. પર્યાય મેં જ્ઞાન કી ઉત્પત્તિ હુઈ, જ્ઞાન કે પર્યાય મેં જ્ઞાન કી ઉત્પત્તિ હુઈ. વો જ્ઞાન કિસ સંબંધિત હૈ, અપના દ્રવ સંબંધિત હૈ. ઉતના કહેના હૈ. और आगे प्रश्न, उन्हें द्रव है इसलिए द्रव का ज्ञान पर्याय में होता है, ऐसा भी नहीं. जो ज्ञान हुआ वो ज्ञेय के कारण से नहीं, फिर भी ज्ञान ज्ञेय उतना तो भेद है कि नहीं है. स्वद्रव ज्ञेय है, भले खुद है, સ્વરૂપ અપના હૈ, પરંતુ વો જ્ઞાન પર્યાય તો નહીં. જો સ્વદ્રવ હૈ વો જ્ઞાન પર્યાય તો નહીં, ઓર જો સ્વદ્રવ જ્ઞેય હૈ વો જૈસે જ્ઞાન પર્યાય નહીં, વૈસે પર્યાય ભી સ્વદ્રવ નહીં હૈ. ઇન્ટરનલ ભેદ હૈ ને, ભેદ મેં એક કે કારણ સે દૂસરા ભેદ નહીં. પર્યાય સ્વતંત્ર, દ્રવ સ્વતંત્ર. પર્યાય કા ષટકારક, પર્યાય મેં દ્રવ કા ષટકારક. બાત કર
દેખેંગે
તો અનાદિશે નહીં દેખતી. સ્વતંત્ર હૈ તબ તો અનાદિ સે નહીં દેખતી હૈ, પરવા નહીં કરતી હૈ. ઇતના દુઃખ ભોગતી હૈ ફિર ભી નહીં દેખતી હૈ તો નહીં દેખતી હૈ, સ્વતંત્ર હૈ. ઠીક, ઉપદેશ માત્ર હૈ, વચન વ્યવહાર માત્ર હૈ, ઇસસે જ્યાદા કુછ નહીં હૈ.
અપને આપ દેખને લગે ઓર કહેના નહીં પડે તો ક્યા કરું.
અપના અસ્તિત્વ કહાં હૈ ખોજો, અંતર ખોજ કરો. મેં કહાં, મેં રાગ મેં, મેં શરીર મેં. મેં કહાં, મેં શરીર મેં હું, મેં રાગ મેં હું, યા મેં જ્ઞાન મેં હું. મેરા અસ્તિત્વ કહાં, ખોજ કરના. આદેશ દેવો તો વચન વ્યવહાર માત્ર હૈ. આદેશ દેને સે કુછ હો જાતા હૈ, એસા થોડા હૈ. સાનુભવ કરો. પર્યાય કો બોલ દિયા, ક્યા બોલા, કે તુમ્હારા ભલા તો ઇસમે હૈ કે તુમ સ્વાનુભવ કરો. લેકિન કોઈ કર રહે થે કહેને સે ક્યા હો જાતા હૈ, ક્યા કહેને સે હો જાતા હૈ. અનુભવ પ્રકાશ મેં લિયા હૈ, લેકિન યે માત્ર વચન વ્યવહાર સે હમારા ઉપદેશ હૈ, એસા સાથ મેં લિખ દિયા હૈ. અભી આગે પઢના હૈ.
હાં.
ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है कि द्रव का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और लोकालोक का ज्ञान वो एक समय में कर लेती है, इतनी ताकत है। सारे लोकालोक का ज्ञान, पर्याय का, स्वयं का ज्ञान और स्वद्रव का ज्ञान तीनों एक साथ हो जाता है। सब प्रकाशक है ना, इसलिए पर्याय की ताकत अपनी तो इस आनंद गुण है अपनी तो इस आनंद गुण है। श्रुत ज्ञान में भी ऐसा सामर्थ्य है, लोकालोक का ज्ञान भी पर्याय में अपने से होता है। लोकालोक है इसलिए पर्याय में इसका ज्ञान होता है ऐसा नहीं। पर्याय में द्रव का ज्ञान होने पर भी द्रव पर्याय में आता नहीं, द्रव पर्याय को स्पर्श नहीं करता और पर्याय द्रव को स्पर्शती नहीं। वस्तु की स्वतंत्रता की ऐसी अलौकिक बात है। पर्याय दृष्टि छूट जाती है, दृढ़ दृष्टि हो जाती है, इस तरह प्रयोजन की सिद्धि होती है। ज्ञानी को सर्वत्र सर्वथा निर्विकार होने पर भी पर ब्रह्म प्रेममय पराभक्ति के वश है। इसका जिन्होंने हृदय में अनुभव किया है ऐसे ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा है। बहुत गुड परिभाषा है। समझसार पढ़ना आसान है, ये बातें समझनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि समझसार पर तो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण बहुत दिया, वरना तो वो भी इतना कठिन हो जाता। ऐसा है कि जो परब्रह्म मैंने शुद्ध आत्मा वो सर्वथा निर्विकार है, बात तो साफ है कि सर्वथा निर्विकार होने पर भी परब्रह्म जो है वो प्रेममय पराभक्ति के वश है। तो प्रेममय पराभक्ति कौन चीज है? दृढ़ दृष्टि, तो उस पर कब्जा करती है, उसको बस कर लेती है। संसार में तो कुछ बस होवे तो वो विकृत अवस्था गिनी जाती है, तो जैसे उसको बस कर लिया। और जो निर्विकार आदमी होता है वो किसी के बस में नहीं आता है। तो यहां तो उल्टा हो गया कि परब्रह्म है वो सर्वथा निर्विकार होने पर भी पराभक्ति के वश हो गया, वो प्रेममयी पराभक्ति से दृढ़ दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? दृष्टि ने द्रव पर कब्जा लिया कि नहीं लिया? हाँ, कब्जा कर लिया ना। इसलिए इसका जिन्होंने हृदय में अनुभव किया है ऐसे ज्ञानियों की ये गुप्त शिक्षा है।
गुप्त शिक्षा क्यों का?
बोध, गुप्त बोध है ये। दृढ़ दृष्टि का जो बोध है बहुत गुप्त है, लोग जानते नहीं इस चीज को। जगत में इस चीज को लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं है कि ये क्या चीज है, दूरदृष्टि कौन सी चीज है। नहीं, प्रेम में क्या है कि प्रेम में भिन्नता नहीं रहती, और जहां भिन्नता रहती है वहां प्रेम नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि में तो भिन्नता नहीं रहेगी, अवैधता हो जाएगी। इसलिए प्रेम में बराबर की मान लिया है।
हाँ
श्रीमद जी को तो समझने के लिए काफी अध्ययन चाहिए, मतलब काफी गहराई चाहिए। तो बहुत खुद भाषा में बहुत गहरी गहरी बातें लिखी है। नीचे का नीचे वाला ना, ज्ञानी को सर्वत्र मोक्ष है, यह बात यद्यपि यथार्थ है तो भी जहां माया पूर्वक परमात्मा का दर्शन है ऐसे जगत में विचार कर पैर रखने जैसा उन्हें भी कुछ लगता है। बहुत सयानी भाषा में बात करते हैं कि ज्ञानी को तो सर्वत्र मोक्ष है, वो कहीं भी बंधन में आते नहीं। ज्ञानी कहीं बंधते नहीं, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल में वो नहीं बंधते। फिर भी ये बात यथार्थ है, मानते हैं हम, स्वीकारते हैं। फिर भी जहां मायापूर्वक परमात्मा का दर्शन है, आप है तो परमात्मा, सभी परमात्मा ही है ज्ञानी की नजर में, तो सब सभी आत्मा परमात्मा है। लेकिन जगत के जीव माया प्रपंच वाले ऐसे होते हैं कि उनके संग में जाना तो थोड़ा विचार करके जाना, ऐसे नहीं चला जाना। पैर रखना, एक कदम रखना, पैर रखना मैंने एक भी कदम रखना हो तो विचार पूर्वक रखना। परमात्मा है फिर भी माया पूर्वक परमात्मा का दर्शन वहां होता है, माया के साथ होता है।
इसका
नहीं करना,
हाँ
यही बात है, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने जगत के जीव सत्संग के योग्य नहीं है, मैं तो सब परमात्मा, लेकिन मायापूर्वक परमात्मा का दर्शन कर लो तो पैर रखने का दिल नहीं होगा। उनकी भाषा तो बहुत दूर है, खास करके सुभाष भाई के साथ जो 25वां वर्ष में पत्र चला है, भरी शब्द से बात लिया है। तो एक जगह हरि का नाम में अपना आत्मा लेते हैं, दूसरी जगह हरि को परमेश्वर जगत नियंता कहते हैं, तीसरी जगह हरि को कुदरत कहते हैं, चौथे जगह हरि को कोई दूसरी बात कह देते हैं। मैंने अब भिन्न भिन्न अर्थ कैसे निकालोगे, अगर पूरी बात समझ में नहीं हो तो एक ही शब्द का तीन चार अर्थ होता है, ऐसा हो जाएगा। अपना समय सार प्रवचन सार पढ़ा लिखा आदमी श्रीमद जी में को पढ़ करके नहीं निकाल सके, वो शोभा भाई निकालते थे हरि के पत्र में। योग्यता दूसरी चीज होती है, विद्वत्ता दूसरी चीज होती है।
ધર્મનો વ્યવહાર અને અધ્યાત્મનો વ્યવહાર એ પણ સંતાપ.
વ્યવહાર રત્નત્રય જે છે એ આગળનો વ્યવહાર છે, નિશ્ચય રત્નત્રય છે તે અધ્યાત્મનો વ્યવહાર છે, સમ્યક દર્શન નામ ચારિત્ર અને મોક્ષ માર્ગ અધ્યાત્મનો વ્યવહાર છે. બાકી વ્યવહાર શ્રદ્ધા વ્યવહાર જ્ઞાન શાસ્ત્ર વ્રતાદિનું વ્યવહાર આચરણ ચારિત્ર આગળનો વ્યવહાર છે. મોક્ષ માર્ગમાં દોનો સાથ રહેતા હૈ. મોક્ષ માર્ગમાં અકેલા આગમ કા વ્યવહાર વો ભી મોક્ષ માર્ગ નહીં, પણ મોક્ષ માર્ગમાં અકેલા અધ્યાત્મ કા વ્યવહાર હોય ઓર આગમ કા વ્યવહાર નહીં હોય એસા બનતા નહીં. સાધક દશા મેં તો નિશ્ચય ભી હૈ ઓર વ્યવહાર ભી હૈ. રાજચંદ્રજી પૂરા પૂરા પઢા શરૂ છે આદિ અંત તક નહીં પઢા?
હા
દિક્કત તો પડી ગઈ, કઈ કઈ ગુડ ભાષા એક દફે તો પૂરા આદિ સે અંત તક પઢને લાયક હૈ. कितनी ही प्रारब्ध स्थिति ऐसी है कि जो ज्ञानी पुरुष के विषय में उसके स्वरूप के लिए जीव को संदेह का हेतु हो, पर इसलिए ज्ञानी पुरुष प्राय जड़ मौन दशा रखकर अपने ज्ञानित्व को अस्पष्ट रखते हैं, तथापि प्रारब्धवशात वह दशा किसी के स्पष्ट जानने में आए तो फिर उसे उस ज्ञानी पुरुष का विचित्र प्रारब्ध संदेह का कारण नहीं होगा. क्या समस्या आई थी? प्रारब्ध मैंने पूर्व कर्म का उदय. प्रारब्ध क्या है? पूर्व कर्म का उदय. पूर्व कर्म की उदय की स्थिति ऐसी है कि ये ज्ञानी कैसे हो सकता है ऐसा लगे, संदेह हो जाए, ऐसा आदमी ज्ञानी कैसे हो सकता है.
उसका उदय देखने ना, सामने वाले को उदय उसका देखने ना.
हाँ, जीव को संदेह का हेतु हो, इसलिए तो गुरुदेव ने बहुत सी बातें खोली कि ज्ञानी चक्रवर्ती भी होता है, यानी लड़ाई भी करता है, यानी गुस्सा भी करता है, यानी व्यापार भी करता है. ज्ञानी कोई दरिद्री हो तो मजदूरी भी करता है. क्या किसी भी हालत प्रारब्ध स्थिति तो कुछ कुछ भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है. चारों गतियों में जो चतुर्थ गुण स्थान रूप ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, तो चारों चारों गति में चारों गति के अनुसार प्रारब्ध होता है. तीन इंच में तीन इंच गति अनुसार प्रारब्ध होता है पूर्व कर्म का उदय. जैसे मछली को ज्ञान हुआ वे छान के पानी कैसे पिएगी, पानी छान के पिएगी क्या? तो ये बात तो ऐसी है कि हाँ तो उदय ही ऐसा है उनका पूर्व प्रारब्ध अनुसार. अपने रूप में स्वीकार नहीं करता है, लेकिन प्रारब्ध को प्रारब्ध के रूप में नहीं स्वीकारता है ऐसी बात नहीं है. अपने रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, भिन्न रहते हैं, लेकिन वो भी बंधन में तो है। पूर्व निबंधन जो किए हुए कर्म है उसमें से तो वो भी नहीं छूट सकते। वो तो चाहते हैं कि अभी वर्तमान समय में मोक्ष दशा हो जाए, सिद्ध दशा हो जाए, तो मुझे दूसरा समय नहीं चाहिए, लेकिन उसको भी संभव तो नहीं है। इसलिए जो पूर्व प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ता है, उसको जो सजा है उनके पूर्व गुनाहों की सजा है ये, और प्रमाणिक तौर से वो भोगते हैं। क्या ये जब मैंने ही अपराध किया है, गुनाह तो मेरा है, तो मुझे भुगतना चाहिए। पैसा आपका लिया तो मुझे देना चाहिए, इसमें क्या है? पैसा तो मैंने ले लिया, अब आप लेने को आए तो मैं मुंह बिगाड़ू, ये बात कोई ठीक है क्या? प्रमाणिकता की है क्या? ये नहीं है। ऐसे वो समझते कि उदय तो लेने को आया है, मैंने पहले जमा कर रखा है, अभी उधारने की बात है, बात खत्म। फिर उसमें कोई नाराजी होने का सवाल ही नहीं रहता, इसलिए वो तो उसमें समाधान रहता है उनका, असमाधान नहीं होता है। किसी भी प्रकार का उदय हो, असमाधान का कोई कारण नहीं। कि अपने किए हुए कर्म है, कोई किसी के दूसरे के दिए हुए थोड़े हैं, बात खत्म। संसार में भी सज्जन आदमी क्षमा याचना करेगा तो क्या कहेगा? मेरे से भूल हो गई है, इसका जो भी दंड है मैं तैयार हूं भुगतने के लिए, बोलता क्या नहीं बोलता? ये तो लोकोत्तर सज्जन है ज्ञानी, तो इसलिए उनको कोई ऐसा समाधान नहीं है। अब क्या प्रश्न है इसमें? ये एक प्रश्न करने लायक है कि जीवों को संदेह का हेतु हो और इसलिए ज्ञानी पुरुष प्राय जड़ मन दशा रखकर अपने ज्ञानित्व को अस्पष्ट रखते हैं, ये प्रश्न करने लायक है कि नहीं? ज्ञानी अपने ज्ञानीपने को अस्पष्ट क्यों रखते हैं, स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? कि अगले को नुकसान होता है इसलिए स्पष्ट करते हैं, ये भी इसकी करुणा है। संदेह करे तो नुकसान ही होगा ना, क्या होगा? अगर उस पर शक से चला गया, प्रमाणिक आदमी पर चोरी का शक करो तो क्या हुआ? अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अपराध तो सब करने वाले को होगा ना, तो नुकसान किसको होगा? यानी कि विराधना किसको होगी? शक करने वाले को, संदेह करने वाले को होगा, तो इसलिए वो स्पष्ट नहीं करेंगे अपने दशा को। पूछा जाए तो और पूछा जाए, जो भी उसको नुकसान है ऐसा नहीं करेगा, पूछे नहीं पूछने का सवाल नहीं। अगले को नुकसान होता है तो नहीं करेगा, लाभ होता है तो करेगा। थोड़ी मर्जी की बात क्या है, तो थोड़ा अलग प्रसंग था, ये तो अपनी दशा के विषय की बात है। ठीक है, इसमें भी उसकी करुणा ही है, सही बात है। कोई जो भी उस अगले के हित में करें, कहेंगे जो भी कहेंगे, माँ है बच्चे को लड्डू खिलाती है तो भी इसके हित में है, और कभी थप्पड़ भी लगाती है तो इसके हित में है, तो लगाती भी क्या है? नहीं मारती है। कोई सवाल ही नहीं, नहीं कर सकते ऐसा कौन सवाल है। अपना बहुमान का परिणाम को कौन रोक सकते हैं? परिणाम को पर किसी की पहुंच है क्या? परिणाम
को लगता है
भक्ति के परिणाम को कोई नहीं रोक सकता है। क्रिया तो पुण्य के अनुसार होगी, पुण्य योग होगा तो क्रिया होगी, परिणाम को कोई रोक नहीं सकते, उल्टा हो सुलटा हो कुछ भी। सवाल ही पैदा नहीं। अधिक भक्ति हो जाएगी उनको। तो कल ही बात चली थी कि प्रेम तो वियोग में भी बढ़ता है, संयोग में भी बढ़ता है। उसी का नाम तो प्रेम है, उसका स्वभाव ही ऐसा। वियोग में घट जाए वो प्रेम ही नहीं। बस ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न मुझे हो गया। प्रश्न तो ये होने लायक था। वैसे तो सामर्थ्य रूप है पर दूसरा भिन्न है, दो हेतु है इसमें से। छह अर्थ निकाला भिन्नता भिन्नता वाला। पहले में भिन्नता वाली बात चल रही है। भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, ऐसे कह रहे हैं। तो वहाँ भी भिन्नता के बात है। इससे भी भिन्न है ना,
सुपर्याय को डाल दिया।
वो सामर्थ्य है वो तो व्यक्त पर्याय तो है ही नहीं। सामान्य है वो विशेष नहीं, विशेष है वो सामान्य नहीं।
विशेष भी तो सामान्य की विशेष है ना, दूसरे द्रव्य की तो नहीं है।
सामान्य का विशेष है फिर भी सामान्य वो नहीं है, विशेष है। तो फिर तो दो ही खाता है, एक स्व और एक पर खाता दो ही है, तीसरा खाता है नहीं। खत्म नहीं करेंगे तो किसी एक में तो खत्म नहीं करनी पड़ेगी। अध्यात्म की तो बात जोर जोर से आती है। अध्यात्म तत्व ऐसा है कि देखने वाली पर्याय को जोर आए बिना नहीं रहता, और जब जोर आता है मस्ती आती है तो फिर कोई बंधारण पंधारण का ख्याल नहीं रहता। मैंने द्रव्य गुण पर्याय अपनी परखी, ये जो सब बातें हैं उस सिर्फ बंधारण की तौर से उसका विचार करने के स्टेज में उसका काम है, पहचान करने के स्टेज में उसका काम है, अनुभव करने के स्टेज में उसका काम नहीं है। अनुभव के स्टेज में उसका कोई काम नहीं है। फिर शुरू शुरू में आप समझ लो कि क्या वस्तु व्यवस्था क्या है, वैज्ञानिक तौर से साइंटिफिक बेस से वस्तु व्यवस्था क्या है वो समझ लो। संसार में भी क्या होता है, हीरा खरीदने को जाता है उस वक्त परीक्षा करता है, जेवर भी खरीदने को जाता है दागिना उस वक्त परीक्षा करता है, सब डिजाइन कैसी, घाट कैसा, वो कैसा, सोना कैसा, मीरा कैसा, फलाना कैसा। फिर पहनने के वक्त कोई थोड़ा उसका विचार करेंगे, वो स्टेज खत्म हो गया है, अब तो पहनने का आनंद लेना है। उस वक्त वो विचार करे तो आनंद को खोए। ज्ञान में बिठा दिया, मतलब ज्ञान में उसका ज्ञान हो गया, ज्ञान में आ गए सब, इनका स्वरूप
ज्ञान में आ गया।
उसका अस्तित्व का स्वीकार किया कि नहीं, इसलिए ज्ञान में तो आ गया, उसको ज्ञान में आया तो स्वीकार किया। सर्वज्ञ में से ब्रह्म बत्ता नहीं था, जीव चेतना गुण छे, अस्थिनो एक बोल छे मूल गाथामा, रूप नथी, रस नथी, गंध नथी, स्पर्श नथी, संस्थान नथी, पण चेतना गुण वाळो छे एम करीने गाथा छे ने, એનો એ પેરેગ્રાફ છે, એ બહુ સરસ છે। હા, સીધું અનુસંધાન છે, સમસ્યા છે। પોતાના અનુભવમાં આવતા સ્વયં કે અનુભવને આતે હુએ ચેતના ગુણ દ્વારા સદા હી અંતરંગ મેં પ્રકાશમાન હૈ, અંતરંગ મેં પ્રકાશમાન હૈ મતલબ વેદન ગોચર હૈ, અંતરંગ મેં वेदन गोचर है, इसलिए वो ग्राह्य है, ग्रहण हो सकता है, इसलिए वो चेतना गुण वाला है। जीव चेतना गुण શબ્દ રસ રૂપ ગંધ વ્યક્તિ વિહીન છે, નિર્દિષ્ટ નહીં સંસ્થાન જીવનું ગ્રહણ। જીવ ચેતના ગુણ, ચેતના ગુણમ નો શબ્દ છે, ચેતના ગુણમ, ચેતના ગુણ વાળો, ચેતના સ્વભાવ વાળો છે એમ કહેવાય છે। કેવો છે ચેતના સ્વભાવ? કે જો અંતરંગ મેં સદાહી પ્રકાશમાન હોય, 17-18 માં જે આ બાળ ગોપાલ ની વાત લીધી, એમ કેવું છે, એમાં એમ વાત લીધી છે કે વ્યક્તપણા નો અભાવ હોવા છતાં, એટલે અવ્યક્ત છે, વ્યક્તપણા નો અભાવ હોવા છતાં પણ સ્વસંવેદન કે બલ સે, એ શબ્દ લીધા, પોતે સદા પ્રત્યક્ષ હોને સે, કબ સદા પ્રત્યક્ષ હૈ, કાય સે સદા પ્રત્યક્ષ હૈ, સ્વસંવેદન કે બલ સે। સ્વસંવેદન કા ઇતના બલ હૈ કે આપ ઉસકો મિટા નહીં સકતે। ક્યા સ્વસંવેદન કા ઉતના બલ હૈ કે ઇનકો કોઈ મિટા નહીં સકતા, ઉતના બલવાન હૈ વો, ઉસકા અસ્તિત્વ કો કોઈ મિટા નહીં સકતો, યે આગે પીછે નહીં કર સકતા, બલ હૈ તો ताकत है, सदा प्रत्यक्ष होने से, अनुमान गोचर मात्र प्रणा का अभाव होने से उसका अनुमान करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष में अनुमान क्यों करे, अनुमान तो परोक्ष इसका किया जाता है, जो स्वयं प्रत्यक्ष है उसका अनुमान क्यों? आप मेरे सामने बैठे हो, आपका अनुमान क्यों करे? नहीं देखा तो अनुमान करे, सामने वाली चीज का अनुमान क्या? बहुत बढ़िया बात है। पूरा पढ़े अपन। जब तो लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, वो केवल या नहीं जाने, हम तो जान नहीं सकते समकित है कि नहीं है किस पर, परंतु स्वयं आत्मा है वो क्यों नहीं जा, क्यों न जाने? कहीं आत्मा गांव नहीं चला गया? अर्थात समकित हुआ है उसे आत्मा स्वयं जानता है। अब किसकी बात है? स्वयं की बात है। स्वयं को समकित है या नहीं वो केवल ज्ञानी जाने, ऐसा कोई कहते हैं वे हमको समकित है कि नहीं है मैं तो नहीं जाने, केवल ज्ञानी जाने मेरा समकित हुआ। तो कहते हैं कि आत्मा, तेरा आत्मा कहीं गांव चला गया है क्या? जिस तरह कोई पदार्थ खाने पर उसका फल होता है, उसी तरह समकित होने पर, भ्रांति दूर होने पर उसका फल स्वयं जानता है कि अभी मुझे कोई भ्रांति नहीं है। ज्ञान का फल ज्ञान देता ही है, पदार्थ का फल पदार्थ लक्षण के अनुसार देता ही है। आत्मा में से, अंतर में से कर्म जाने को तैयार हो तो उसकी खबर अपने को क्यों न पड़े? अर्थात खबर पड़ती है, समकित की दशा छिपी नहीं रहती, अपने आप को ये बात समझ लीजिए। नहीं पर की बात है, बोला ना कि वो तो केवल ज्ञानी जाने, लोग कहते कि समकित है नहीं मुझे क्या पता है, तो केवल ज्ञानी जाने, ऐसा नहीं पता चलता है। तो दूसरे की जो बात है वो तो पात्रता पर आधारित है। ये तो उत्तम मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु का नेत्र महात्मा को पहचान लेता है और एक ज्ञानी पहचान लेता है। सामान्य जन, लौकिक जन नहीं पहचानते, सामान्य मुमुक्षु भी नहीं पहचानते, मध्यम कोटि के मुमुक्षु भी नहीं पहचानते, उत्कृष्ट कोटि के मुमुक्षु पहचानते। ये बात उन्होंने 619 के पत्र में स्पष्ट किया है। हाँ 670 में जो पत्र है उसमें साफ आई। पहचानने में तो शक्ति अपनी है, योग्यता अपनी है, ज्ञानी के परिणाम को देखते पहचानते हैं, और पहचानने में योग्यता अपनी है। पहचानना जब ज्ञानी को हो तो ज्ञानी के दशा को देख करके ही पहचान होगी ना, पहचान किसकी होती है?
ज्ञानी कहते हैं कि रास्ता है, ज्ञानी के मुख से बात सुनते हैं, रास्ता है, मार्ग की विधि विधि को अपनाते हैं, तब ज्ञानी ये सही है सब पहचान होती है, या फिर जान लेते हैं अपने को परिणाम की बिगड़
उसकी दशा नजर में आती है, उसकी दशा नजर में आती है जब पहचान होती है। किसी भी चीज की पहचान तो उसी चीज का ज्ञान तो होने से ही होती है ना, प्रैक्टिकल साइड तो वही है, योग्यता अपनी है। हीरा को देखे भी नहीं, हीरा को पहचानने का सवाल कहाँ है? जोरी होना पड़ता है वो दूसरी बात है, जोरी नहीं होता तो हीरा को नहीं पहचानता, लेकिन पहचानता है तो हीरा को देख करके कि बिना देख करके।
ऐसा होता है कि जब कांटेक्ट होता है तब नहीं पहचानता है, बाद में वो कांटेक्ट होने के बाद जो विधि बताई थी वो विधि को
फैलाता
है तब पहचानता है।
जो पहचानने का कितनी कितनी बात है पहचानने में वो एक दूसरी बात है। बहुत सी बातें हैं, विधि की भी है और इनकी दशा की भी है, बहुत सी बातें हैं। इसकी वाणी में जो अंडरटोन है, ये सब बातें हैं इसमें, लेकिन उनको सामने जिस जो चीज़ है उसको पहचानते हैं ना,
पहचानते उसको है, लेकिन पहचानने की विधि की बात चल रही है।
हाँ, पहचानने की जो विधि है उसमें तो योग्यता मुख्य बात है, पात्रता मुख्य बात है। पात्रता में तो बहुत से गुण होते हैं, उसको एक शब्द में कहते हैं उत्तम पात्रता, उत्तम मुमुक्षुता। उत्तम मुमुक्षु है वो मार्ग को खोजता है और मार्ग बताने वाला मिलता है तो यहाँ से भी पहचानता है, उसको वहाँ से विश्वास आता है, फिर वो आगे जा करके इनकी दशा तक पहुँच जाता है, देखिए क्या विलक्षणता है इसमें। तो गुण की बात चली थी विलक्षणता के,
अपने परिणाम को अच्छी तरह अवलोकन करे फिर सामने वाले के परिणाम को जांचे तो उसको मालूम हो कि विलक्षणता क्या चल, अपने परिणाम में तो साधारणता।
अपने परिणामों को तो देखते देखते नजर बहुत पैनी हो जावे तब वो बात वो आगे के आती है सामने वाले को पहचानने के, पैनी नजर वाले का काम है ये। ऐसे तो हमारे हम बीच में वो डायमंड की लाइन में गए, थोड़े बहुत माथा डाला था, तो जगदीश भाई के ऑफिस में बैठे थे मुंबई में, तो एक बहुत अच्छी बात बोले, आपके लाइन में उधारी का धंधा बहुत है, 45 days, 60 days, 90 days का उधारी में एक आदमी को माल मिलता है और एक पैकेट में लाखों का माल होता है जेब में रहता है, तो एक आदमी सैकड़ों से फसाद धंधा करता है तो कितना माल उधार ले सकता है, करोड़ों का। किसी को पता नहीं कि उसने किस आगे कितना माल लिया है और आगे कितना लेने वाला है, तो ये तो बहुत रिस्क वाली बात हो जाती है। तो बोले कि शशी भाई, हीरा को पहचानना आसान है, आदमी को पहचानना इतना आसान नहीं है। क्या बोले, मैंने किससे कितना काम करना, ये काम हीरो को हम परीक्षा करने वाला भी कभी कभी उसमें भूल खा जाते हैं, हीरा खरीदने में भूल नहीं खा जाए लेकिन कभी डीलिंग करने में भूल खा जाते हैं तो पैसा हमारा भी नहीं आता है, चला जाता है हमारा पैसा, ये बात और कठिन है। बात तो ऐसी ही है, पहचानना तो मामूली बात, बहुत पैनी नजर वाली थी बात। वो प्रैक्टिस वहाँ से होती है, अपने परिणाम को देखने में
ये वाले को पहचान होती है।
हाँ, तो वो प्रैक्टिस होने पर नजर जब सूक्ष्म होती है तभी पता, उन्होंने वही कहा कि जो अपना परिणाम का ही अवलोकन नहीं करता है उसको ज्ञानी के पहचान कहाँ से आएगी। बात ये शास्त्र पढ़ने में तो ये बात है कि ये किस जगह क्या बात कह रहे हैं वही ध्यान में नहीं आवे तो हम कल्पना से कुछ और समझ लेंगे।
हाँ,
कहेंगे कुछ और, हम समझेंगे कुछ और। बात चलेगी रामायण की, हम समझेंगे महाभारत की।
अपनी सुंदरता से उत्पन्न होती है, द्रव्य निमित्त है न गुण न अपने पूर्व पर्याय सुंदरता बताई उसने। तो उसने ये भी बताया कि पर्याय द्रव्य के आलम्बन बिना उत्पन्न होती है, इस प्रकार से तब अनुभव होता है तब पर्याय को और द्रव्य का आलम्बन है कि नहीं
कहने में आता है।
व्यवहार कितना
प्रकार का है, है। अलिंग्रहण का विस्मय बोल क्या है, क्या बोले हैं, है कि नहीं है?
भी कहने में आता
है। बस कहने में क्या बात है, पर्याय ने द्रव्य का आलम्बन लिया वो कहने की बात है, उसका रुख उधर था वो उधर हुआ उतनी बात है, लेकिन पर्याय पर्याय है, पर्याय द्रव्य द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय आत्मा है। क्या कहा अलिंग्रहण का विस्मय बोल में, प्रत्यभिगी ज्ञान का कारण जो द्रव्य सामान्य वो का वो, वो का वो, इसको नहीं आलिंगित हुई ऐसी जो शुद्ध पर्याय यही आत्मा है। कहा कि नहीं कहा, बस बात कर रहा संस्थान नाम कर्म में विपाक पर पुद्गलों में कहवा जुदा जुदा संस्थान के पेपर में मिली समस्त वस्तुओं का स्वरूप साथ जेने स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित से एवं होवा छता જેને સમસ્ત લોકના મિલાપથી રહિત નિર્મળ અનુભૂતિ થઈ રહી છે એવો હોવાથી પોતે અત્યંતપણે સંસ્થાન જ્ઞાને છે, માટે અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન છે। આ ચોથો બોલ છે, કાંઈ વાંધો નહીં। શું કહ્યું છે કે જુદા જુદા સંસ્થાન રૂપે પરિણમેલી સમસ્ત વસ્તુઓ, સંસ્થાન એટલે આકાશ, એરિયાનો આકાશ, ક્ષેત્રફળનો આકાશ, તો બધી વસ્તુને પોતપોતાના જુદા જુદા આકાર છે, એની એની સાથે સ્વાભાવિક સ્વસંવેદન શક્તિ સંબંધિત છે, એટલે કે જ્ઞાનમાં જણાય છે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ એવો હોવા છતાં પણ જેને સમસ્ત લોકના મિલાપથી રહિત નિર્મળ અનુભૂતિ થઈ રહી છે છતાં ભિન્નપણાનો અનુભવ કરે છે, આખા લોકના પદાર્થોનો આકાર જાણવા છતાં પોતે ભિન્નપણે પોતાનો અનુભવ કરે છે એમ કહે છે, એવો હોવાથી પોતે અત્યંત સંસ્થાન બનાવે છે એમ કહે છે। કોઈ આકાર ગમે એટલા જણાય, મારે કોઈ આકાર સાથે સંબંધ નથી, પોતે તો ભિન્ન જ છે, જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકાર જણાયું છતાં જ્ઞાન ભિન્ન છે એનાથી, હા અનુભૂતિ થઈ રહી છે જ્ઞાન દર્શન, સમજવામાં આવે છે કે જે પરિણતિ છે એ જુદી રહી છે, પણ ઉપયોગ તો બહાર જાય છે ને, પણ જે ઉપયોગ બહાર જાય છે એ એકત્વ નથી કરતો, એ ભિન્ન જ ભિન્ન રહીને જ જાણે છે, અને એ ભિન્ન રહીને જાણવું એટલે કેવી રીતે જાણવું એ સમજાય તો જ્ઞાન દશા સમજાય જાય છે। આપણા અત્યારે જે ગ્રંથ લખાય છે એમાં એ મુખ્ય મુદ્દો એ છે, એની અંદર સમજાય જાય એને એવું છે, નહીં તો કલ્પના થાય, જ્ઞાનીનો પણ ઉપયોગ તો બહાર જાય છે, ઉપયોગ તો બહાર જાય છે, એ પોતાનો જાય છે ને એવી રીતે કલ્પના કરે છે એમ નથી,
પોતા સમાન કલ્પના
થઈ જાય છે, જાણતો હોવા છતાં ભિન્ન રહીને જાણે છે, બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી વાત છે. આખી ટેકનિક ત્યાં છે એ વાતની. આત્મજ્ઞાન કરને કે લીએ ક્યા કરના, આત્મા કી પહેચાન કરના, વો બાત અચ્છી હૈ. અબ તુજે જવાબ તો દેના હૈ ઇસ તરહ કે તું બરાબર સમજ મેં લે લે. ઇસ તરહ સે કભી કિસી ચીજ કી પહેચાન કિયા હૈ અપની ઉમર મેં? કિસ ચીજ કી પહેચાન કિયા?
કોઈ ભી વસ્તુ.
હે?
વસ્તુ કી પહેચાન કિયા?
કોન સી વસ્તુ કી કિયા હૈ?
કિસી ભી વસ્તુ.
જો કભી કિયા હૈ બતાઓ.
પથ્થર હૈ, પથ્થર હૈ,
જૈસે કી દૂધ ઓર છાસ.
સબ અચ્છા.
જ્ઞાન કે દ્વારા પહેચાન કી.
બરાબર. જિસ તરહ ઉસકા પહેચાન કિયા હૈ, જિસ પદ્ધતિ સે, જિસ રીતિ સે, બસ ઉસી રીતિ સે ઇસકા કરના, આત્મા કા કરના.
ઉસકી ક્યા રીતિ હૈ?
ઉસકી ક્યા રીતિ થા?
ઉસકી ક્યા રીતિ? ઉસકો
કૈસે મિઠાસપન સે.
હમ?
ઉસકે મિઠાસપન સે.
મિઠાસપન સે?
જ્ઞાન કે દ્વારા.
હમ, બરાબર. અબ દેખ કે જ્ઞાન મેં જ્ઞાન કા અનુભવ હો રહા હૈ. જૈસે સ્વાદ આયા ને મિઠાસ કા, એસે સ્વાદ આયા મને અનુભવ હુઆ, તો આત્મા એક અનુભવ મેં આને વાલી ચીજ હૈ. ક્યા? આત્મા અનુભવ મેં આને વાલી ચીજ હૈ. ઉસકા ભી અનુભવ આતા હૈ. કિસમે આતા હૈ? કે જ્ઞાન મેં. વો ચીજ કા ભી જ્ઞાન મેં અનુભવ આયા થા ને, તો આત્મા કા અનુભવ ભી જ્ઞાન મેં આયેગા, ક્યોંકિ જ્ઞાન હી અનુભવ કરને લાયક હૈ, જ્ઞાન હી અનુભવ કરતા હૈ, જ્ઞાન હી અનુભવ કરતા હૈ, જ્ઞાન મેં હી અનુભવ આતા હૈ. અબ જ્ઞાન મેં જૈસે દૂસરી ચીજ કા અનુભવ હુઆ, એસે જ્ઞાન મેં જ્ઞાન કા અનુભવ હોતા હૈ. ક્યા? જ્ઞાન મેં જ્ઞાન કા અનુભવ હોતા હૈ. અનુભવ તો હો હી રહા હૈ, કરના કહાં હૈ? અનુભવ તો હો હી રહા હૈ. અબ દેખના હૈ, તુજે પતા નહીં હૈ કે અનુભવ હો રહા હૈ, તો ઉસકો ખોજના હૈ. જૈસે અપને હાથ મેં સે કોઈ છૂટી ચીજ ગિર ગઈ, જૈસે મોતી હો, હીરા હો, અભી દિખતા નહીં હૈ, તો હમ નહીં ખોજેંગે ક્યા? કે નહીં દિખતા હૈ, ચલો છોડો, એસા કરેંગે? નહીં. બસ એ ખોજને કા પ્રયાસ કરના હૈ કે જ્ઞાન મેં જ્ઞાન કા સ્વયં કા અનુભવ હો રહા હૈ, અભી મિલતા નહીં હૈ, તો વહાં હી ખોજના હૈ. એ ઇસકી રીતિ હૈ, મિલ જાયેગા. ખોજને જાઓગે તો અવશ્ય મિલ જાયેગા, નહીં ખોજોગે તો નહીં મિલેગા. પણ ખોજને જાઓગે તો નહીં મિલેગા, એસે કભી બનતા નહીં. બચ્ચે કો ભી મિલ જાતા હૈ 8 સાલ કા, તુમ તો 14 સાલ કા હૈ. અચ્છા, પ્રશ્ન તો અચ્છા હૈ. અભી જિજ્ઞાસા મેં આયા હૈ ઇધર આને કે બાદ, દો તીન દિન સે હી વો જિજ્ઞાસા મેં આયા હૈ. ઉસકે પહેલે તો જો બચ્ચોં કો લાઈફ હોતી હૈ એસા હી થા.